नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद अब अपना आगे का काम शुरू कर दिया है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम से प्रज्ञान रोवर बाहर आ चुका है। इसरो ने प्रज्ञान रोवर का बाहर निकलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर शेयर किया है। करीब 20 सेकंड के इस वीडियो में प्रज्ञान रोवर एक प्लेटफॉर्म से चंद्रमा की सतह पर उतरता देखा जा सकता है। विक्रम लैंडर के प्लेटफॉर्म से उतरने के बाद प्रज्ञान रोवर कुछ कदम आगे जाता भी दिखाई दे रहा है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों मिलकर चंद्रमा की सतह पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रज्ञान रोवर में लगे दो पेलॉड्स चंद्रमा की सतह पर पानी ढूंढने के साथ साथ कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट भी करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लद्दाख के करगिल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, कुछ महीने पहले हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे। इसे भारत जोड़ो यात्रा कहा जाता था। इसका उद्देश्य देश में भाजपा आरएसएस द्वारा फैलाई गई नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़ा होना था। यात्रा से जो संदेश निकला वो था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। पिछले कुछ दिनों में मुझे खुद ये देखने को मिला। यात्रा के समय सर्दियां होने और बर्फ गिरने से मैं लद्दाख नहीं जा सका। लद्दाख में यात्रा करना मेरे दिल में था और इस बार मैंने इसे मोटर बाइक पर आगे बढ़ाया। कांग्रेस सांसद ने कहा, लद्दाख एक रणनीतिक स्थान है। एक बात तो साफ है कि चीन ने भारत की जमीन छीनी है। दुख की बात है कि विपक्ष की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख का एक इंच भी चीन ने नहीं लिया है। ये एक झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि पीएम मोदी सच नहीं बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने के बाद 50 से अधिक फंसे हुए लोगों को एनडीआरएफ ने बचा लिया। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। शेहनू गौनी गांव में बृहस्पतिवार को बादल फटने की घटना हुई थी, जिससे कई जगहों पर भूस्खलन से सड़कें अवरुद्ध हो गई। अधिकारियों ने बताया कि एनडीआरएफ का एक दल 15 किलोमीटर पैदल चलकर फंसे हुए लोगों को बचाने पहुंचा और 15 लोगों समेत सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बारिश से संबंधित एक अन्य घटना में बल्लाद नदी में पानी के तेज प्रवाह के कारण औद्योगिक बद्दी क्षेत्र और पिंजौर को जोड़ने वाला बद्दी स्थित मारनवाला पुल शुक्रवार को गिर पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश जेल विभाग ने बृहस्पतिवार को राज्य की 2018 की छूट नीति का हवाला देते हुए अमरमणि त्रिपाठी की समय पूर्व रिहाई का आदेश जारी किया था, जो जेल में 16 साल पूरे कर चुके हैं। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कवित्री की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर राज्य सरकार, त्रिपाठी और उनकी पत्नी को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। अधिकारियों ने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जेल विभाग ने उनकी उम्र और अच्छे व्यवहार का भी हवाला दिया, क्योंकि अमरमणि 66 साल के हैं और मधुमणि 61 साल की हैं। एनसीपी में हुई दो फाड़ के बीच पार्टी प्रमुख शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी में कोई टूट नहीं है। शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि अजीत पवार हमारे नेता हैं। एनसीपी में कोई विभाजन नहीं है। एनसीपी सुप्रीमो ने अपने भतीजे अजीत पवार के साथ किसी भी मतभेद को खारिज कर दिया। शरद पवार ने कहा कि किसी पार्टी में फूट कैसे पड़ती है, ऐसा तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह पार्टी से अलग हो जाता है, लेकिन आज एनसीपी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया, लेकिन इसे फूट नहीं कहा जा सकता। वो लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है तो फूट पड़ गई, ऐसा कहने की कोई वजह नहीं है, ये उनका निर्णय है। तेलंगाना में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीति अभी से तेज़ हो गई है। इसी बीच तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के नेता और निज़ामाबाद के सांसद डी अरविंद का एक विवादित बयान सामने आया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि लोग वोट चाहे जिसे भी दें या नोटा पर बटन दबाएं, पर चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इसे लेकर सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेता डी अरविंद के बयान से बीआरएस नेताओं ने ईवीएम पर फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सत्ताधारी पार्टी ने भाजपा के लोकसभा सदस्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए चुनाव आयोग से इस मामले को गंभीरता से जांच करने की मांग की है। दिल्ली एयरपोर्ट के नए रनवे पर फ्लाइट 7 सितंबर से उतरना शुरू कर सकती हैं। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए गणमान्य व्यक्तियों के आगमन से एक दिन पहले से नए रनवे पर फ्लाइट्स उतरना शुरू हो जाएंगी। 14 जुलाई 2023 को 29R इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का चौथा रनवे चालू किया गया था। तब से इसका इस्तेमाल केवल टेक ऑफ के लिए किया जा रहा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।